अयांश की आवाज़ सुन आरवी ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। उस वक्त अयांश बहुत गुस्से में नजर आ रहा था और आरवी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अयांश उस वक्त बहुत खतरनाक हो जाता था, कुछ सुनता ही नहीं था, बस अपनी मनमानी करता था। आरवी पहले भी ऐसी स्थिति में आ चुकी थी, उसे वर्तिका और अभी की भी चिंता हो रही थी। अगर बदला लेने या दर्द देने के चक्कर में अयांश ने कुछ कर दिया तो वो उन दोनों को कैसे संभालेगी? ये क्या करते हैं इसकी खबर भी उन्हें नहीं रहती, कहीं जान ले लेने की बात सच ना हो जाए। आरवी के मन में ऐसे ही विचार चल रहे थे। अयांश को अपनी ओर आते देख उसकी धड़कनें बढ़ने लगीं। तभी उसने जोर से दरवाज़ा पीटते हुए चिल्लाया, खोलो दरवाज़ा। अयांश पास आ गया और आरवी को अपनी ओर घुमाकर दोनों हाथों की हथेलियां दरवाजे पर टिकाते हुए उसे बीच में लेते हुए बोला, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे कमरे से एक आवाज़ बाहर नहीं जाती, चाहे दरवाज़ा पीटो या कंठ फाड़ दो। आरवी ने थूक निगलते हुए कहा, ऐसे कैसे? अयांश ने आरवी की कमर में बाहें डालकर उसे अपने करीब खींचा, बस ऐसे ही, बाहर की आवाज़ यहाँ सुनाई देती है, यहाँ की नहीं, तो भूल जाओ, मेरे खोले बिना ये दरवाज़ा खुलेगा या कोई तुम्हारी मदद के लिए आएगा? आरवी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। अयांश ने आरवी को और करीब खींचते हुए कहा, जो मुझे पसंद नहीं वो करने में तुम्हें मज़ा आता है ना, अब मैं वो करूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं, देखूँ तो सही रास आता है या नहीं। इतना कहकर अयांश ने आरवी को उठा लिया। ये देख आरवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उसकी बाहों से उतरने की कोशिश करने लगी कि अयांश ने उसे ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया। बिस्तर पर खुद को पाकर और अयांश को अपने सामने खड़ा देखकर, वो शर्टलेस तो था ही, अपने गीले बालों में हाथ भी घुमा रहा था। आरवी गुस्से से बिस्तर पर बैठकर पीछे सरकते हुए बोली, आप गलत कर रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, लिमिट में रहिए। तभी अयांश ने अपना फ़ोन बिस्तर से उठाया, जो उसने कमरे में आते ही बिस्तर पर फेंक दिया था। आरवी उसकी ओर देख रही थी। तभी उसने आरवी को देखते हुए अपना फ़ोन कान से लगाया, विनित, वर्तिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तुम देख लेना, आज की रात मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी, तंज भरी मुस्कान होठों पर लाते हुए। ये सुनकर आरवी के होश उड़ गए। अयांश ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर वापस बिस्तर पर फेंक दिया। आरवी बिस्तर से उतरने लगी कि अयांश बिस्तर पर घुटने टेक कर चढ़ गया और फट से आरवी के पैर खींचकर उसे बिस्तर पर सुला लिया, और समझने की बारी तुम्हारी है, कहते हुए उसके कंधे पकड़कर उस पर झुकने लगा। आरवी ने आंखें बंद कर अपने हाथ चेहरे के सामने करते हुए चीख उठी। अयांश ने उसके हाथ पकड़कर साइड किया और चेहरे पर नज़र डाली। आंखें कसकर बंद, होंठ अंदर दबाए हुए, डर से सफ़ेद पड़ा चेहरा और माथे पर आ चुका पसीना, दर्द से उभरी लकीरें। अयांश का करीब आना आरवी की हालत खराब कर रहा था। तभी अयांश ने अपनी उंगली से आरवी के गाल को छुआ कि वो फिर चिल्लाई, नहीं, और अपनी हथेली अयांश के सीने पर रखकर उसे अपने पास आने से रोकने लगी। रोक पाओगी मुझे? अयांश ने कहा। आरवी ने अपनी आंखें खोलकर उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मत कीजिए ऐसा, नम आंखों से। तभी अयांश उसके ऊपर से हटा और उसकी कलाई पकड़कर बिस्तर से उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ा। फट से दरवाजा खोला और आरवी को कमरे से बाहर धकेलकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। तभी आरवी ने इधर उधर देखा और जाकर रेलिंग के पास के पिलर से सटकर खड़ी हो गई। चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने बालों को पीछे किया और मुंह से फूंकते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अयांश के कमरे के दरवाजे की ओर देखते हुए बोली, बच गई आरवी, इस दानव के हाथों से बच गई। कैसे कोई गुस्से में इतना भयानक हो सकता है? एक पल तो जान गले में आ गई थी, शुक्र है इसकी बुद्धि फिर गई, मुझे खुद ही बाहर निकाल दिया, वरना। इतना बोलकर वो नीचे की ओर भागी और दिनकर जी के कमरे में जा पहुंची। वहां विनित और राधे दोनों मौजूद थे। मुझे आपसे बात करनी है, दरवाजे पर खड़ी आरवी ने बिस्तर पर बैठे दिनकर जी की ओर देखते हुए कहा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए आरवी की ओर देखा। विनित ने आरवी की ओर देखते हुए कहा, तुम ठीक हो? आरवी ने कहा, जिंदा दिख रही हूँ ना, मान लीजिए ठीक हूँ। विनित ने नामे सिर हिलाया, दादू आपने और जो इसने किया सही नहीं किया है, मुसीबत मोल लेना और उसे गुस्सा दिलाना तो कोई तुमसे सीखे। आरवी को घूरते हुए, आरवी कुछ कहने को हुई कि विनित का फोन बज गया और वो वहीं से चला गया। तभी आओ बैठो, दिनकर जी ने आरवी को अपने सामने आकर बैठने का इशारा किया और वहीं खड़े राधे से बोले, राधे दरवाजा बंद करो। जी मालिक, कहते हुए राधे ने दरवाजा बंद कर दिया और आरवी दिनकर जी के सामने बिस्तर पर आ बैठी। कहो, आरवी ने वहीं खड़े राधे को देखा तो दिनकर जी बोले, फर्स्ट एड बॉक्स दो पहले राधे, आरवी के माथे पर लगी चोट की ओर देखते हुए। जी मालिक, कहते हुए राधे ने बिस्तर के ड्रॉयर से दवाई वाला डिब्बा निकालकर दिनकर जी की तरफ बढ़ाया। वो बॉक्स खोलते हुए बोले, पास आओ, मैं ठीक हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, आरवी ने साफ साफ कहा। तभी दिनकर जी ने अपना हाथ आरवी की तरफ बढ़ाया तो आरवी ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए थोड़ा पास से रख गई। आप दादा पोता दोनों इतने जिद्दी क्यों हैं? दिनकर जी ने कॉटन पर डेटॉल लिया और आरवी के माथे की चोट साफ करते हुए कहा, यही मैं तुमसे पूछूं तो, जिद्दी तो तुम भी बहुत हो, है ना राधे? जी मालिक, अयांश बाबा से भी जिद्दी लगती है ये मुझे, राधे ने आरवी की तरफ देखते हुए कहा। तभी दिनकर जी ने आरवी के माथे पर एंटीसेप्टिक दवाई लगाई और बॉक्स राधे को थमाते हुए बोले, वो दर्द देता है तुम्हें, जानता है, मरहम लगाने के लिए मैं हूँ, आप मेरा छोड़िए, ये छोटी सी चोट मुझे विचलित नहीं करती है, इसको लेकर आप परेशान मत होइए,
आप तो मुझे ये बताइए, आपने क्यों किया ऐसा? क्यों उनसे वो बात की जो उन्हें पसंद नहीं? ये सच है, मैं आपका साथ चाहती हूँ, क्योंकि उसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं आप दोनों दादा पोते का साथ तोड़ना चाहती हूँ। जब आज तक आप दोनों के बीच नाराजगी नहीं आई, तो अब मन मुटाव के कारण क्यों बन रहे हैं? या आप वजह भी मुझे ही बनाना चाहते हैं? उन्हें तो लगता ही ऐसा है। क्या जरूरत थी आपको ऐसी बात उनके सामने रखने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, जिससे वो इतने भड़क उठे? मैं तो नहीं, पर वजह आपको तो पता थी ना। फिर क्यों? आप जानते हैं, आपने जैसे फोर्स किया, उस कारण आज मेरे साथ क्या हो जाता। वो मेरे साथ, आंखों में नमी लाते हुए दिनकर जी ने आह भरी। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो होने की बात तुम बात कर रही हो, वो कभी नहीं होता। जबरदस्ती शादी कर सकता है वो तुमसे, पर वो उस हद तक कभी नहीं गिरेगा जिससे एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो। हाँ, उसे गुस्सा आता है बहुत, तुम्हें चोट भी पहुंचाता है, दर्द देता है, पर ऐसी चोट कभी नहीं देगा जिसके घाव कभी नहीं भर सकते। आरवी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, कमाल है वो जो करते हैं, सिर्फ शरीर को चोट नहीं लगती, मन भी आहत होता है, और मन को पहुंची ठेस उसका कोई मरहम नहीं होता। ताज्जुब हो रहा है, आप जानते हुए भी कि वो गलत करते हैं अपने गुस्से के चलते, फिर भी आप उनकी साइड ले रहे हैं।
लो देखो राधे, मैं इसकी साइड लेता हूँ तो वो बुरा मान जाता है, और उसकी साइड लेता हूँ तो इसे अच्छा नहीं लगता। दोनों एक जैसे हैं, पर मुझे तो दोनों का साथ देना है, और मैंने जो किया सही ना हो पर गलत नहीं है बेटा। वो मानता नहीं किसी भी हाल में, पर मुझे उसे मनाना था। स्वार्थी होकर सोचा मैंने, सालों से उसने कोई खुशी नहीं मनाई, पर क्या पता तुम्हारे साथ तुम्हारी जिद के चलते वो बदल जाए, थोड़ा जैसी जिंदगी जीनी चाहिए वैसी जीने लगे। उसकी माँ उसे छोड़कर गई, ये बात उसे याद है, पर उस दिन वो दुनिया में आया ये भी याद होनी चाहिए ना। पर नहीं, सोच रहा हूँ कि क्या पता ये जो बदलाव आ रहे हैं उससे थोड़ा मेरा पोता भी बदल जाए, भले ही अब मुझसे वो नाराज हो जाए। नफरत तो करने से रहा, और सच में मैं उसे मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। बरसों बीत गए, तुम वर्तिका के लिए कर रही हो, मैं अपने पोते के लिए। एक तमन्ना है मेरी कि मेरा अंशु जिन चीज़ों से खुद को दूर रखता है, जन्मदिन, त्यौहार, जश्न, उनमें दिल से शामिल हो और उस सबको इस घर में भी जगा दे। ये चाहना गलत तो नहीं बेटा? अकेले तो नहीं कर पाता ये सब, पर तुम्हारे चलते ये हो सकता है। पहले मैंने उसे बोला, वो मना करके जाने लगा, तो शर्त रख दी मैंने, बस।